खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में, जो था, जो है, जो आने वाला है, तमाम पाकिस्तानी पासबानों के लिए, उस्तादों, मुबशरों, एल्डरों और डीकनों और कलीसियों के लिए खुदावंद की बरकत चाहता हूँ। आप सबकी खिदमत में पादरी फैसल हाजिर है कि कलामे खुदा की उन सच्चाइयों को जो खुदा ने मुझ पर अजागर की हैं, पाकिस्तान की कलीसिया तक पहुंचाने वाला बनूं, और खासो खास अपनी कलीसिया के लिए जो खुदा ने मुझे दी है, ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान में। इससे पहले कि हम किसी भी किताब का मुतालिया या किसी भी मजमून पर सीखें, जरूरी है कि तीन बातों को अपने जहन में रखें। पहली बात, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, जो खुदा का लहाम, खुदा की सांस, खुदा का दम बनी नु इंसान को इसीलिए दिया गया कि उनके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो, ताकि उनकी इम्तहानों की उन तमाम घड़ियों में खुदा का कलाम उन सब के लिए जिंदगी की रोटी बने। और बाइबल मुकद्दस का हर एक सोशा और हर एक नुक्ता और हर एक बयान और वादा इसीलिए लिखा गया है कि बनी नु इंसान उनसे फायदा उठाकर कादरे मुतले खुदा को, उसके बेटे यीशु मसीह को और उस कुदरत को जो तारीखे इंसान में, जिसकी ख्वाहिश अबलीस को रही है, जिसकी ख्वाहिश तमाम फरिश्तगान की है कि उस ताकत को, उस कुदरत को, इस इख्तियार को हासिल करे जिसे खुदाए रूहुल कुद्दस कहते हैं, वो बनी हुई इंसान के लिए क्या है, मौजूद है मददगार के तौर पर। सो खुदा को जानने, यीशु मसीह को और उसकी मोहब्बत को समझने का वाहद जरिया और रूह कुदस की कुदरत से वाकफियत हासिल करने का वाहद जरिया है कि किताबे मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया किया जाए। इसीलिए आज हाजिर हूं कि आप तक खुदा के कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाया जाए। सो मेरे दिल की यही ख्वाहिश और दुआ है कि जब तक मेरी जिंदगी की सांसें हैं, इन पैगामात के वसीला से ईमानदारों की तरक्की का बायस बनता रहूं। सो आज आपकी खिदमत में खुदा का खाकसार बंदा हाजिर है, और मेरी ये दुआ है कि इन पैगामात के वसीला से जो किताबों और आयत बा आयत मतालिया किया जाएगा, उनके वसीला से आप यीशु मसीह की कुर्बत को हासिल करें, आप यीशु मसीह को जानने वाले बने कि उसने आपके लिए क्या किया, उसकी कुदरत जो बयान से बाहर है आप सबके लिए मौजूद है, और खुदा जो के अजीब मशीर और अब्दियत का बाप है उसे जानने वाले बने कि उसने कितनी मोहब्बत आप सबसे की है। इससे पहले कि मुतालिया किया जाए, तीन बातें तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। अगर आप में से अभी तक किसी ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो ये मौका है सादा तौर पर इस बात को मान लेने का कि खुदा उन खुदा मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह में जन्म लिया है, आदम का गुनाह लेकर पैदा हुआ हूं, मुझ में कोई भी भलाई और नेकी बसी नहीं हुई, मेरी अपनी रासबाजी गंदे लिबास की मानद है। So, जब हम इस बात का इकरार करते हैं तो कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं कि तुझे खुश कर सकूं, इसलिए तेरे बेटे को अपना निजात दहिंदा, तेरे बेटे यीशु मसीह को अपना छुड़ाने वाला और कफारा देने वाला मानता हूं कि उसने मेरे तमाम गुनाहों के लिए आज से 2000 साल के ज्यादा अरसे से पहले रूमियों के हाथ दुख उठाया, यहूदियों ने उस पर अल्जाम लगाया और उसने सलीब पर अपनी जान देकर कहा, तमाम हुआ, मेरे तमाम गुनाहों का कफारा यीशु ने दिया। मैं इस कफारे को कबूल करता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, मेरा नजात दहिंदा, वाहद जो मुर्दों में से जी उठा, वाहद वो ही हस्ती है जिसके वसीला से निजात है। अगर आप इस बात का इकरार करते हैं, करती हैं, तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, क्योंकि खुदा ने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की है। आप चाहे कोई भी जुबान बोलते हो, किसी भी कबीले से आपकी वाकिफियत हो, खुदा ने आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु आपके लिए कुर्बान कर दिया। पहली बात, यीशु को कबूल करने की जरूरत है। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस खुदा का अलहाम है जो आपकी और मेरी तरक्की के लिए है। इसमें हम शक नहीं कर सकते। इंसान झूठ बोल सकता है, नबी झूठ बोल सकते हैं, खुदा झूठ नहीं बोल सकता। इंसान बदल सकता है लेकिन खुदा कभी भी अपने वादों से फिरता नहीं है। सो खुदा का कलाम आप सबके लिए है, इसे लें और इसका मुतालिया करें। और तीसरी बात, खुदाओं खुदा मुझे इस जमीन पर यीशु मसीह की अच्छी गवाही और उसका अच्छा नुमाइंदा बनकर जिंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत दे। सो आए हम खुदा के हुजूर झुकें और अपने बाइबल के मुतालिया को शुरुआत दुआ से करें। जब किसी बात की समझ ना आए, जब कोई भी दरख्वास्त या मिन्नत या दुआ आपके दिल में हो, तो दुआ से शुरू करें कि खुदा आप इस हिस्से को मुझे समझने की कुव्वत और ताकत दे। खुदावन खुदा मैं फलां के लिए दुआ कर रहा हूं, फलां बेटी के लिए दुआ कर रहा हूं, कर रही हूं। सो दुआ बहुत ही अहम है। दुआ का मतलब है खुदा से गुफ्तगू करना, और बाइबल मुकद्दस का मतालिया का मतलब है खुदा हमसे गुफ्तगू करता है। स्वयं हम खुदा से बात करें। खुदा बाप, आसमान और जमीन के खालक और मालिक, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक रूह की कुदरत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सुनने वालों के लिए खुदा हूं खुदा आज का पैगाम खुदावंद बरकत का, हौसला फजाई का वसीला ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। आज मैं किताबे मुकद्दस में से, खुदा के कलाम में से यीशु मसीह के बारे में सिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब वो इस जमीन पर था, यीशु मसीह की जात के बारे में जब हम सीखना शुरू करते हैं, वो इब्तदा ही से था। इसीलिए यीशु मसीह को कहा गया है अल्फा और अमेगा, जिसका मतलब है कि वो शुरू से ही था। इससे पहले कि किसी चीज की पैदाइश होती, इससे पहले कि कोई फरिश्ता पैदा होता, वो शुरू ही से था। इसीलिए उसे कहा गया है इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। यीशु मसीह के बहुत से नाम हैं, उसे कलाम कहा गया है, उसे कलमा कहा गया है, उसे खुदा की सांस कहा गया है, उसे जिंदगी का चश्मा कहा गया है, उसे अच्छा चपान कहा गया है, उसे अच्छा रहनुमा कहा गया है, उसे कुर्बान होने वाला खुदा का बर्रा भी कहा गया है, उसे दुल्हा भी कहा गया है। सो बहुत से नामों से यीशु मसीह जाना जाता है, लेकिन आज हम यीशु मसीह की जिंदगी, जो जमीनी जिंदगी उसने 33 साल की जमीन पर गुजारी, यरूशलम में, गलील में, नासरत में, यहूदा में और बैतलहम में, उन तमाम इलाकों में जो उसने 33 साल का अरसा गुजारा, मैं चाहता हूं उस जिंदगी के जमीनी सफर में से हम यीशु मसीह के मौजजात पर गौर करें। आज मेरी यही दुआ और ख्वाहिश है कि इन मौजजात के वसीला से आपके ईमान की तरक्की हो। सो आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से, नए अहदनामा में से, मत्ती की अंजील उसका 8 बाब, और वहां से हम मौजजात के इस सफर को शुरू करेंगे। इससे पहले कि उनको शुरू किया जाए, आपको बताना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 37 मौजजात हैं जिन पर हम गौर करेंगे, जो यीशु ने किए, ना के यूहन्ना ने, ना के पतरस ने, ना के यकूब ने, ना के पालूस ने। हम यीशु मसीह के शागिर्दों के जो मौजजात है उन पर नहीं गौर करेंगे, बल्कि वो मौजजात जो यीशु मसीह ने खुद किए उन पर गौर करेंगे। और जब उनको गिनते हैं तो 37 वाकयात हैं जो यीशु मसीह ने 37 मुख्तलिफ मौजजे किए। ये मौजजे जब हम पढ़ेंगे तो वो कलाम सच होगा, जैसे पालूस रसूल कहता है रोमियो 10 बाप उसकी 17वीं आयत में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो उन 37 मौजूदात पर गौर करेंगे, इसलिए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील उसका 8 बाब, उसकी 1 आयत से हम 4 आयत तक पढ़ेंगे और इसमें से सीखेंगे। थोड़े से वक्त में आपकी पूरी तवज्जो की जरूरत है। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब, उसकी 1 आयत में यूं मरकूम है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यसु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तहीं काहिनों को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। अजीजो, इन चार आयात में हम खुदा के कलाम में से चंद सच्चाइयां सीखेंगे। इससे पहले कि इस मौजजे पर गौर करें, आपकी रूहानी तरक्की और मालूमात के लिए बताना चाहता हूं, जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब को देखते हैं, तो वहां पर यूहन्ना, जो जब्दी का बेटा और यकूब का भाई था, जिसने यूहन्ना की इंजील को लिखा, इस शागिर्द को जिसे यसु मसीह ने जिम्मेदारी दी थी सलीब पर से कि तेरी माँ ये है, ये वही शागिर्द है जो पतमस के जजीरे में कैद हुआ, जब वहां पर उसे फेंक दिया गया, तो उसने यूहन्ना का मकाशफा यानी के मकाशफा की किताब को भी लिखा। ये वही है जिसने पहले उन तीन खतूत को भी लिखा, जिसे यूहन्ना, बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना का पहला आम खत, दूसरा और फिर तीसरा खत। यूहन्ना की इंजील को जब हम देखते हैं 20वें बाप में, वहां पर वो इस गवाही को लिखता है और कहता है कि जो काम यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए किए, अगर वो सब लिखे जाते तो उनके लिए जमीन पर गुंजाइश ना होती जो किताबें लिखी जाती। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, वो ये भी कहता है, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाप की 30वीं आयत और 31वीं आयत में, कि वो तमाम मौजजे जो यसु ने अपने शागिर्दों के साथ रहकर किए, वो सब इसीलिए लिखे गए ताकि आप और मैं और हर सुनने वाला उनको पढ़कर ये बात जाने और इस बात का यकीन करें कि यसु मसीह खुदा का बेटा है और उसी में हमेशा की जिंदगी है। सो बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे मौजजात, ऐसे काम जो यसु मसीह ने किए, नहीं लिखे गए। अगर लिखे जाते तो इस जमीन पर किताबों को रखने की गुंजाइश ना होती। लेकिन आज हम उन 37 मौजजों में से गौर करेंगे एक पर, और ये मौजजा है, एक कोढ़ी को यसु मसीह क्या देता है, शिफा देता है, एक कोढ़ी को पाक साफ करता है। कोढ़ की बीमारी को जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, तो सबसे पहले इन बातों को जरा ध्यान में रखें, ये बातें बहुत ही जरूरी है। जब भी किसी बाइबल मुकद्दस का मुताल्या करें तो हमें इन 6 बातों को जहन में रखना है, जो हर एक आयत के मुताल्या के लिए, किसी भी हिस्से को पढ़ने के लिए जरूरी है। ये 6 बातें, इनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे। जब हम देखते हैं पहली आयत में लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। कौन उतरा? यसु मसीह। क्या मतलब है कि भीड़ उसके पीछे हो ली, और कब का ये वाक्या है? ये उस वक्त का वाक्या है जब यसु मसीह 5वें बाप में हम देखते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर जब वो चढ़ गया, उसे पहाड़ी वाज कहते हैं। पहाड़ी वाज में जब यसु मसीह ने 5वें बाप से लेकर 7वें बाप तक, ये लंबी गुफ्तगू है, जब हम असली जबान का मुताल, जिसे यूनानी और अबरानी या अरामी जबान कहते हैं, जिसमें बाइबल मुकद्दस लिखी गई, जब उसका मुताल करते हैं, तो यूनानी में हमें ये पता चलता है कि ये लंबा क्या है, लंबी गुफ्तगू है। उर्दू जबान में मुख्तलिफ बापों में इसे बांटा गया ताकि हम समझ सके कि कौन सा बाप है, कौन सी आयत है। लेकिन जब हम असली जबान में देखते हैं, तो असली जबान में एक लंबी गुफ्तगू हमें नजर आती है, 5वें बाप से लेकर 7वें बाप तक, और उस तमाम हिस्से में यीशु एक ही जगह पर बैठा उस पहाड़ के ऊपर क्या दे रहा है, तालीम दे रहा है। जब आप 5वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं और उसे आखिर तक 7वें बाब की 29वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कि एक ही जगह पर बैठकर यीशु मसीह ने सारी बातें की। यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज किया जिसमें मुबारकबादियों के बारे में तालीम दी। यीशु मसीह ने उसके बाद झूठे नबियों के बारे में बताया एक ही जगह पर कि उनसे खबरदार रहो, वो भेड़िए हैं भेड़ के रूप में। छठे बाप में यीशु मसीह ने कहा कि उन रियाकारों से खबरदार रहो, उन रियाकारों के हम शक्ल ना बनो जो खुदा को कम और इंसानों को ज्यादा खुश करते हैं। और उसी हिस्से में यीशु मसीह ने उनको बताया कि किस तरह दुआ करनी है, रियाकारी की दुआ नहीं करनी, दिखावे का हदिया नहीं देना और दिखावे के रोजे नहीं रखने। और फिर यीशु मसीह ने कहा ऐबजोई नहीं करनी, तुम दुनिया का नूर हो, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हमें पांचवें बाप की पहली आयत से लेकर सातवें बाप के अखीर तक ये सब कुछ मिलता है। सो वहां पर जब यीशु मसीह ने गुफ्तगु खत्म कर ली तो लिखा है जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये वही भीड़ है जो वहां पर खड़ी है, सुन रही है खुदा के कलाम को। सो जब उन्होंने सुन लिया तो क्या देखते हैं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। कोढ़ की बीमारी बाइबल मुकद्दस में इस मुख्तसर वक्त में बताना चाहता हूं। कोढ़ की बीमारी कुछ जिस्मानी तौर पर कोढ़ी होते थे, बहुत दफा कोढ़ लग जाता था, जो बीमारी दूसरों से किसी को दूसरे को लग जाती थी दो, और या फिर कोढ़ की वजह क्या होती थी, जब कोई खुदा की नाफरमानी या खुदा की मुखालफत में खड़ा होता था। हमें नमान कोढ़ी नजर आता है जिसे कोढ़ की बीमारी थी। हमें मरियम का कोढ़ नजर आता है कि जब उसने मूसा के हारून ने और मूसा हारून और मरियम ने मूसा की मुखालफत की तो खुदा ने आसमान से उतरकर उनसे कलाम किया और मरियम क्या हो गई, कोढ़ी हो गई। मूसा की बहन मरियम पर कोढ़ आ गया, क्यों, उसने नाफरमानी की। और बहुत से वाकयात हैं हमें जिक्र मिलता है कि कोढ़ की वजह क्या थी, जिस्मानी कोढ़, बहुत दफा पदेशी और या फिर किसी से लग जाने वाली बीमारी, और या फिर गुनाह के बायस कोढ़ इंसानों की जिंदगी में आता था। सो एक कोढ़ी ने कोढ़ियों के लिए यह हुक्म था पुराने अहदनामा के मुताबिक कि वो जहां जहां बस्तियां होती थी अगर किसी को कोढ़ हो जाता था तो वो बस्ती से बाहर रहता था, वो लोगों के नजदीक नहीं आ सकता था। क्योंकि यहूदी रिवाज के मुताबिक खुदा ने कहा था कि अगर कोई किसी कोढ़ी को छू ले या किसी मुर्दा को या जिसे जजियान की बीमारी हो उसे छू ले तो वो बंदा बंदी क्या रहे, 7 दिन तक नापाक रहे। इसलिए कोढ़ी शहर के अंदर नहीं रहते थे, शहर के बाहर रहते थे। इसका जिक्र आपको गिनती की किताब उसके पांचवें बाप की पहली आयत से 4 आयत में मिलेगा, इसे जरूर पढ़ें। वहां पर कोढ़ियों को बताया गया है कि वो शहर से बाहर रहें। फिर दूसरा सलातीन उसके 7वें बाप की हमें 7वीं और 9वीं आयत में 4 कोढ़ियों का जिक्र मिलता है, वो भी शहर के बाहर बैठे रहते थे और बहुत दफा वहीं पर मर जाते थे, या बहुत लोग कम होते थे जो उनको खाना फेंकते थे, उनके नजदीक नहीं आते थे ताकि नापाक ना हो जाएं। सो यहां पर एक कोढ़ी को देखते हैं और उस कोढ़ी ने क्या किया, यीशु मसीह को सजदा किया। सजदा बाइबल मुकद्दस में बहुत ही अहम लफ्ज है। ये पहली दफा इब्राहिम जब खुदा की हजूरी में उस पहाड़ पर जाता है जहां पर खुदा ने उसे हुक्म दिया था कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, तो वहां पर उसने क्या कहा अपने नौकरों से। जब हम 22वां बाप उसकी 5वीं आयत देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा कि मैं जाता हूं, अपने नौकरों से कहा, और मैं और आइजक वापस आकर क्या, जब सजदा करके वापस आएंगे तो फिर तुमको मिलेंगे। सो सजदे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुकम्मल हलीमी, प्रस्तश, अपनी खुदी का इनकार कर देना और खुदा को अव्वल दर्जा देना। सो इस कोढ़ी ने जो अपनी हालत को जानता है, कोढ़ी है, उसने सजदा किया और खुदावन से कहा कि अगर तू चाहता है तो मुझे पाक साफ कर सकता है। जब जब हम खुदा के जूर दुआ करें हमारी यही सोच होनी चाहिए कि अगर तेरी मर्जी है तो हमें धोकर पाक और साफ कर। अगर खुदावन तो चाहता है कि मेरे पास घर हो तो मुझे दे, खुदावन अगर चाहता है कि मुझे बीमारी से शिफा मिले तो तू अपनी मर्जी को पूरा कर। सो इस कोढ़ी से हमने 3 बातें हैं, 30 सीखते हैं। पहली, वो कोढ़ से वाकिफ है कि वो कोढ़ी है, वो नापाक है, वो नापाकी की हालत में है। दूसरा, वो खुदावन यीशु मसीह को सजदा करता है। तीसरी, तेरी पाक मर्जी पूरी हो, जैसे तू चाहता है वैसा हो। और जब यीशु मसीह ने ये हालत उस कोढ़ी की जिंदगी में देखी तो क्या कहा? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और वो कोढ़ी फौरन पाक और साफ हो गया। हम इससे जो बात सीखते हैं, इससे जो बात सीखते हैं कि कौन कलाम कर रहा है, क्या इसका मतलब है, कब ये बात हुई, कहाँ का ये वाक्या है, क्यों ये सब कुछ हुआ और कैसे हुआ। सो यीशु मसीह कलाम कर रहा है, इसका हकीकत क्या है कि यीशु मसीह है जो वाहद है, जो शफा दे सकता है। कब हुआ? जब यीशु मसीह पहाड़ पर से उतरा और कोढ़ी ने उसके हजूर झुककर सजदा किया। कहाँ हुआ? ये गलील की झील के पास जो वाकया है वहां पर ये वाकया हुआ है। कुफरनहूम के शहर के बाहर ये वाकया हुआ है। और देखते हैं क्यों हुआ, क्योंकि कोढ़ी ने दरख्वास्त की है कि अगर तेरी मर्जी है तो ये मौजजा मेरे लिए जारी हो। और कैसे हुआ? खुदावन यीशु मसीह की कुदरत से। हमें भी अपनी जिंदगी में इन बातों को मानने की जरूरत है कि खुदावन खुदा हम नापाक हैं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से क्या है, महरूम है। इंसान गुनाह में पैदा हुआ है। अगर आप में से कोई यहां पर सुनने वाला है जिसने पहले यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी मसीही पैदा नहीं होता। मसीह बनने के लिए यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। जैसे इस कोढ़ी को पता है ये नापाक है, हम सब नापाकी की हालत में पैदा हुए, गुनाह की हालत में, आदम के गुनाह के बायस सब खुदा से दूर थे। लेकिन जो यीशु को कबूल कर लेता है वो क्या हो जाता है, खुदा के नजदीक जा जाता है। दूसरी बात, सजदा, अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, पूरी अकल और पूरी कुव्वत से खुदावन खुदा से मोहब्बत करनी है। और यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे तो इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। इस कोढ़ी को जिसे पहले कभी किसी ने नहीं छुआ, यीशु ने छूकर उसे पाक और साफ कर दिया। हम भी जो खुदा से दूर थे गुनाह के कोढ़ के बायस, यीशु मसीह के छूने से, यीशु मसीह के मरने से, यीशु मसीह के कफारे से, यीशु मसीह के कलाम से, यीशु मसीह के बहे हुए खून से हमें धोकर उसने पाक और साफ किया है। आप इस बात को मानकर उसके बेटे और बेटियां बन सकते हैं। और चौथी बात, यीशु ने कहा कि जाकर गवाही दे, उन काहिनों को बता, उन काहिनों को दिखा। जब किसी कोढ़ी का कोढ़ साफ हो जाता था तो उसके लिए हुक्म था कि काहिन उसके जिस्म को देखे, काहिन उसकी सारी हालत को चेक करे। इसका जिक्र आपको अहबार की किताब उसके 13वें बाब में मिलेगा, उन तमाम बीमारियों के बारे में जो खुदा ने काहिन को बताई थी कि किस तरह का जिस्म होगा। कैसे तू बता सकता है कि किसे कौन सी बीमारी है? अहबार 13 बाब में आपको जिक्र मिल देगा तमाम कोड़ियों के और दूसरी जिस्मानी बीमारियों के इलाज में। यहां पर हम देखते हैं यीशु ने कहा जाकर मूसा की जो शरीयत, मूसा का जो रवाज है, उसके मुताबिक अपना हदिया, अपनी नजरें कुर्बान कर और गवाही दे कि खुदा ने तेरे लिए क्या किया है, खुदा ने तेरे लिए कैसे अजीब काम किए हैं। हम भी जो गुनाह की जेल में थे, यीशु ने हमें आजाद किया है। हमें दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है इस खबर को कि मैं आजाद हूं, मैं शफा पा गया हूं, मैं शफा पा गई हूं। आगे आ चलकर आप देखेंगे जितनों को शफा हुई वो खामोश नहीं बैठे, जिन कोढ़ियों को पाक साफ किया गया वो घर में छुप नहीं गए, उन्होंने जाकर बताया कि किसने उनको शफा दी है। अगर आप आज वो बंदी और बंदा है जिसे यीशु मसीह ने धोकर पाक साफ किया है, गुनाहों से छुड़ाया है, तो आप पर लाजम है कि जाएं और सब कौमों को जाकर गवाही दें कि यीशु ने आपके लिए क्या किया है। ये है वो पहला मौजजा जिसमें यीशु मसीह ने कोढ़ को पाक साफ करके उस कोढ़ी को कोढ़ से शफा देकर क्या कर दिया, साफ कर दिया, जो इस बात की तस्वीर है कि जैसे गुनाह के बायस हम खुदा से दूर थे, कोढ़ के बायस ये इंसान इंसानों से दूर था। लेकिन उसके कोढ़ को जब दूर कर दिया तो उसे दोबारा लोगों के पास और लोगों की नजदीकी हासिल हुई। सो खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद में फिर मिलेंगे, खुदावंद आप सबके साथ हो।